सुजीत कुमार की आवाज में राजनीति विज्ञान के पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के सिद्धांत का विवरण अध्याय प्रथम राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्षेत्र तथा स्वरूप। अरस्तु कहते हैं, समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब वह बिना कानून तथा न्याय के जीवन व्यतीत करता है तो वह निकृष्टतम हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता ही न हो क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो, वह जंगली जानवर या देवता ही हो सकता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोण। अरस्तु अपने उपर्युक्त कथन में एक सामान्य सत्य का ही प्रतिपादन करता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन, अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक जीवन और नीति शास्त्र मानव जीवन के नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। इन शास्त्रों के समान ही राजनीति विज्ञान द्वारा मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान विषय के विद्वानों द्वारा इस विषय की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें प्रमुख रूप से निम्नलिखित तीन वर्गों में रखा जा सकता है। राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में तथा राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन। मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है जिनके अंतर्गत मानव ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और जिनके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं में राज्य सबसे प्रमुख है। राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द पॉलिटिक्स यानी भाषा के पॉलिस शब्द से ही बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। इस दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान विषय के कुछ विद्वानों ने इस विषय की परिभाषा केवल राज्य के अध्ययन के रूप में की है। ब्लंट शैली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। इस प्रकार जर्मन लेखक गैरीज का कथन है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की संख्या के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी संपत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय पहलू तथा उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान डॉ. गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन। वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान उपर्युक्त परिभाषाओं को स्वीकार नहीं करते। वे राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं। उनका कथन कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही वह यंत्र अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप में परिणित की जाती है। इसलिए सीले और लीकॉक आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को सरकार का ही अध्ययन कहा है। सीले के शब्दों में, राजनीति विज्ञान उसी प्रकार का सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। इसी प्रकार लीकॉक का भी कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन। उपर्युक्त सभी विद्वानों द्वारा दी गई राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं वस्तुतः एकांगी हैं और जहां तक राजनीति विज्ञान का संबंध है, इसमें राज्य और सरकार इन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही प्रयोग करता है और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है। राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार का और सरकार के अस्तित्व की किसी कल्पना के लिए राज्य का अस्तित्व अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का कोई अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता और राज्य एवं सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय बन जाते हैं। फ्रांसीसी विचारक पॉल जेनेट ने इसी विचार को व्यक्त करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार पर और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डिमॉक ने भी राजनीति विज्ञान को इसी प्रकार परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। इस संबंध में गिलक्राइस्ट की परिभाषा कुछ अधिक स्पष्ट है। जिसमें उसने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। लॉस्की, गेटल और आधुनिक युग के सभी लेखकों ने भी इसी मत का समर्थन किया है। मानवीय तत्व, लेकिन राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें विषय के मानवीय पक्ष की अवहेलना की गई है। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि किसी भी समाज विज्ञान और इसलिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन उसके प्रसंग में मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। राजनीति विज्ञान में तो राज्य और सरकार के संपूर्ण अध्ययन में मानवीय पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और राज्य तथा सरकार का व्यापक अध्ययन केवल इसलिए किया जाता है कि ये संस्थाएं मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। यदि केवल राज्य और सरकार पर ही दृष्टि रखी जाए तो राजनीतिक विश्लेषण स्थिर नितांत औपचारिक और संस्थागत होकर रह जाएगा। इस संबंध में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमन हेलर ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। वस्तुतः राज्य और सरकार का अध्ययन निरपेक्ष नहीं वरन मानवीय संदर्भ में ही किया जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान की न्यायसंगत परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझा जाता था, और यह अध्ययन संस्थात्मक था, अर्थात इसमें राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को ही अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद ज्ञान के क्षेत्र में जिन नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान के अध्ययन की समस्त स्थिति के संबंध में असंतोष का उदय हुआ। इस असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप स्थिति में परिवर्तन आया। द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में इस नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ वह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। इन वर्षों में राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में जो व्यवहारवादी क्रांति हुई उसमें इस बात पर बल दिया गया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन ने एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। अतः यह कहना उचित होगा कि राजनीति विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है जिसमें राज्य को ही नहीं वरन समाज को भी सम्मिलित किया जा सके। यह समाज परक दृष्टिकोण है जिसकी मान्यता यह है कि व्यक्ति को राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भों में ही उचित रूप में समझा जा सकता है और राजनीतिक अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। केटलिन तो इस विचार का इतना सबल समर्थक है कि कुछ स्थानों पर तो वह राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में कोई भी भेद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण अंतर आया है। इस विषय की परंपरागत परिभाषाएं संस्थागत हैं और इनमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन को राज्य सरकार तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं के साथ जोड़ा गया है, लेकिन राजनीति विज्ञान के आधुनिक लेखक इस संस्थात्मक दृष्टिकोण को अनुचित और अपर्याप्त समझते हैं। परंपरागत अध्ययन की इस संस्थात्मक के कारण ही आर्थर बेंटले ने इस बंजर और औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन, बंधिया और स्थिर बतलाया है। आधुनिक लेखकों का विचार है कि राजनीतिक संस्थाओं के घोषित उद्देश्य चाहे कुछ भी क्यों न हो, उनके पीछे दृश्य और अदृश्य राजनीतिक प्रक्रिया कार्य करती हैं और यथार्थवादी राजनीतिक अध्ययन की दृष्टि से यह प्रक्रिया ही अधिक महत्वपूर्ण है। अतः आधुनिक लेखक राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा उन स्थानों और प्रक्रियाओं को अधिक महत्व देते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती हैं। इसी आधार पर आधुनिक लेखकों जी कैटलिन, मैक्स बेवर, एच डी लॉसवेल, डेविड स्टन और हरमन हेलर आदि के द्वारा राजनीति विज्ञान को शक्ति, प्रभाव, सत्ता, नियंत्रण, निर्णय और मूल्यों का अध्ययन बतलाया गया है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में अपनाया गया यह आधुनिक दृष्टिकोण भी एकांगी है। इस संबंध में हमें यह स्मरण रखना होगा कि शक्ति राजनीति विज्ञान के विभिन्न परिवर्तियों में से केवल एक है, एकमात्र नहीं। अतः राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों, विशेषतः वीओ की जे रोलैंड, पिनॉक, डेविड जी स्मिथ आदि के द्वारा इस विषय की परिभाषा के संबंध में परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की गई है। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। एक विषय के क्षेत्र में से हमारा आशय यह बात से होता है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा की भांति ही इस विषय के क्षेत्र में के संबंध में कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। प्रसिद्ध लेखक गार्डनर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया है। पहला, राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज। दूसरा, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास तथा विभिन्न रूपों की गवेषण एवं तीसरा, उक्त खोज तथा गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान। प्रोफेसर गेटल के मतानुसार भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः तीन बातें सम्मिलित हैं। पहला, राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों का विकास। दूसरा, विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन एवं तीसरा, राज्य का भावी अर्थात आदर्श स्वरूप निश्चित करना। प्रोफेसर बिलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों की व्याख्या करता है, राज्य, सरकार और कानून। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि सन 1948 में संयुक्त राष्ट्रीय संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तत्वाधान में समस्त विश्व के राजनीति विज्ञान के पंडितों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित समझे जाने चाहिए। पहला, राजनीति के सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक विचारों का इतिहास। दूसरा, राजनीतिक संस्थाएं, संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन और तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा, राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत। राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा समुदाय नागरिकों का सरकार व प्रशासन में भाग लेना और लोकमत। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन। क्षेत्र के संबंध में यूनेस्को सम्मेलन द्वारा अपनाया गया उपर्युक्त दृष्टिकोण निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न विद्वानों तथा यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीति विज्ञान के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्न बातें आती हैं। पहला, मानव का राजनीतिक जीवन। दूसरा, राज्य। तीसरा, सरकार। चौथा, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। पांचवा, राजनीतिक विचारों का इतिहास और राजनीतिक विचारधाराएं। तथा छठा, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संबंधों और संगठन का अध्ययन। मानव का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन नहीं किया जाता, वरन राज्य संस्था के संदर्भ में ही मानव का अध्ययन किया जाता है। नागरिकों से ही राज्य का निर्माण होता है और नागरिकों के लिए ही राज्य जीवित रहता है। राज्य के नागरिक समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले अधिकारों का ही उपभोग करते हैं तथा राज्य के नागरिक होने के नाते व्यक्ति के राज्य के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। वस्तुतः व्यक्ति और राज्य के संबंध की समस्या अत्यंत जटिल रही है और राज्य के प्रारंभिक चरण से लेकर अब तक इस समस्या पर विचार किया जाता रहा है। अतः राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकार, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों का संचालन करने वाले आधारभूत सिद्धांतों और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। कैटलिन के शब्दों में राजनीति विज्ञान नियंत्रक एवं नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। राज्य का अध्ययन व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम विकास और समाज के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सर्वोच्च इकाई है। अरस्तु ने राज्य के संबंध में ठीक ही कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। मानव जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप ही भिन्न भिन्न समयों पर राज्य के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के इन सभी रूपों का अध्ययन किया जाता है। गेटल के शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है की ऐतिहासिक खोज, राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए की राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना है। राज्य के अतीत का अध्ययन। राज्य के वर्तमान स्वरूप का ज्ञान उसके भूतकाल के अध्ययन के आधार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत हम राज्य की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि राज्य का विकास कैसे हुआ तथा राजनीतिक संस्थाओं और विचारधाराओं ने क्या क्या स्वरूप धारण किए। राज्य को अपना वर्तमान रूप प्राप्त करने में सदियां लगी है। प्रारंभ में राज्य परिवारों के समूह मात्र थे जो आगे चलकर कुलों और जनपदों में विकसित हुए। यूनानी इतिहास में इन्हीं को नगर राज्य कहा गया है। धीरे धीरे ये नगर राज्य परस्पर मिलकर संघों में संगठित होने लगे। यूनान के एथीनियन लीग और एकियन लीग इस प्रकार के संघ राज्यों के ही उदाहरण हैं। प्राचीन भारत में इसी प्रकार के नगर राज्यों ने परस्पर संगठित होकर वज्जीव संघ और अंध अंधक वृष्णि संघ का निर्माण किया। इसके पश्चात विजय और पराजय के चक्र ने हमें वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों के युग में लाकर खड़ा कर दिया और वर्तमान समय में हम विश्व संघ की कल्पना करने लगे हैं। राज्य के इन बदलते हुए रूपों के साथ ही साथ मनुष्य के राज्य विषय विचारों में भी परिवर्तन हो रहा है। प्राचीन काल में राज्य और उसकी आज्ञाओं को दैवी समझा जाता था, लेकिन वर्तमान राजनीतिक विचारों के अनुसार राज्य की प्रभुत्व शक्ति किसी एक व्यक्ति या किसी श्रेणी में निहित न होकर सर्वसाधारण जनता में निहित होती है। राजनीति विज्ञान इस बात का भी विवेचना करता है कि राजनीतिक विचारों का विकास कैसे हुआ और इस विकास ने राज्य के स्वरूप को किस प्रकार प्रभावित किया। राज्य के वर्तमान का अध्ययन। ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में राज्य एक विशेष स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, जिसे राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। आज की स्थिति में यह राष्ट्रीय राज्य मनुष्यों का सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट समुदाय है और अन्य कोई भी समुदाय राज्य से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। राजनीति विज्ञान वर्तमान समय में राज्य के स्वरूप, प्रयोजन, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र पर विचार करता है। राज्य के कार्यक्षेत्र के दो रूप हैं, आंतरिक और बाह्य। समाज में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना, देशवासियों की चतुर्मुखी उन्नति, राष्ट्रीय और स्थानीय स्वशासन का कार्य संचालन राज्य के आंतरिक कार्य क्षेत्र में आते हैं और राज्य के बाह्य कार्य क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति, संधि विग्रह तथा विश्व शांति से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। राज्य के भविष्य का अध्ययन। राज्य का अस्तित्व मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है और क्योंकि मानव जीवन की श्रेष्ठता की कोई सीमा नहीं है, इसलिए राज्य के वर्तमान स्वरूप को अंतिम नहीं कहा जा सकता। वर्तमान समय में अनेक विचारधाराओं द्वारा राज्य के स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र के संबंध में नवीन विचारों का प्रतिपादन किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, समाजवादी विचारधारा के अनुसार राज्य द्वारा आर्थिक जीवन को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, तो दूसरी ओर अराजकतावादी विचारधारा के अनुसार राज्यहीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार राज्यहीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए। व्यक्तिवादी राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्ष में है, तो बहुलवादी राज्य को मानव निर्मित अन्य समुदायों के समान ही समझते हैं। इन सबसे अलग अंतर्राष्ट्रीयता के प्रतिपादक युद्धों के मूल कारण इन राष्ट्रीय राज्यों का अंत कर एक विश्व संघ की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हैं। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य का सर्वकालीन अध्ययन करते हैं। सरकार का अध्ययन। राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है, इसलिए सरकार के बिना राज्य के किसी अध्ययन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। एक समय था कि जबकि सरकार ही राज्य होता था और लुई चौदहवें जैसे शासक मैं ही राज्य हूँ जैसी गर्वपूर्ण बात कहते थे। राजतंत्रात्मक शासन में राजा के हाथ में ही शक्ति का समस्त केंद्रीयकरण होने के कारण इस प्रकार की बात कही जाती थी, किंतु कुछ समय बाद इस राजतंत्रात्मक शासन के स्थान पर कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई है और वर्तमान समय में इसके स्थान पर जनता के प्रतिनिधि शासन की स्थापना हो गई है। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ सरकार के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन स्पष्ट अंग हो गए हैं और वह इन अलग अलग अंगों के माध्यम से शासन व्यवस्था का कार्य करती है। वर्तमान समय में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि शासन को जनता के प्रति और अधिक उत्तरदायी कैसे बनाया जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान में हम सरकार के अंग, उसके प्रकार, उसके संगठन आदि का भी अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसके अंतर्गत मानव के उन संपूर्ण कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध उनके राज्य नामक संगठन के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य से होता है, तथा इसमें सरकार का अध्ययन भी किया जाता है। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की राजनीतिक और अन्य प्रासंगिक समस्याओं का भी अध्ययन करता है। आज के प्रजातांत्रिक युग में स्थानीय स्वशासन का विशिष्ट महत्व है। गांव, नगर और शहर सभी क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं का निराकरण वहां के लोगों के सहयोग से ही किया जा सकता है। स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन और इसमें नागरिकों का सहयोग जैसे विषय राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण अंग हैं। अतः स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली और स्थानीय समस्याओं का अध्ययन हमारे विषय की प्रमुख विवेच वस्तु है। आधुनिक राज्य मूलतः राष्ट्रीय इकाई है और स्थानीय स्वशासन की समस्याओं का अध्ययन राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में ही किया जा सकता है। अतः राष्ट्रीय समस्याएं भी हमारे अध्ययन का प्रमुख अंग है। राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य की व्यवहारिक रूप में प्राप्ति वर्तमान समय की एक प्रमुख राष्ट्रीय समस्या है और इस संबंध में राजनीति विज्ञान का निर्देश है कि स्थानीय दृष्टिकोण की अपेक्षा राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रमुखता दी जानी चाहिए। सांप्रदायिक विद्वेष, भाषावाद और क्षेत्रीयता की समस्याओं का भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। शासन प्रबंध का अध्ययन, राज्य और सरकार राजनीति विज्ञान के प्रमुख अध्ययन विषय हैं और इनके विशेषतया सरकार के संदर्भ में लोक प्रशासन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण तत्व है। यद्यपि लोक प्रशासन एक पृथक विषय है, परंतु लोक प्रशासन से संबंधित मूल बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान का भी अंग है। लोक सेवकों का मंत्रियों से संबंध तथा प्रशासन को अधिकाधिक कुशल एवं लोक हितकारी और उत्तरदायित्व बनाने के उपयोगों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। राजनीतिक दलों तथा अन्य दबाव गुटों का अध्ययन, आज राजनीति विज्ञान राजनीति के सतही अध्ययन से आगे बढ़कर राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं का अध्ययन करने में संलग्न है और अध्ययन के इस क्रम में राजनीतिक दल व दबाव गुट सबसे अधिक प्रमुख रूप में आते हैं। वस्तुतः ये तो वे संस्थाएं हैं जिनके द्वारा समस्त राजनीतिक जीवन को परिचालित किया जाता है। वर्तमान समय में तो संविधान और शासन के औपचारिक संगठन की अपेक्षा राजनीतिक दल और दबाव गुट के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। राजनीतिक विचारों का इतिहास और आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक विचारों के इतिहास की पृष्ठभूमि में ही आज की राजनीतिक स्थिति को ही सही रूप में समझने का कार्य किया जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान में सुकरात और प्लेटो जैसे से लेकर बर्टेंड रसल तथा मनु से लेकर महात्मा गांधी तक विभिन्न विद्वानों द्वारा राजनीति के क्षेत्र में व्यक्त किए गए विचारों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधों और संगठनों का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधों और संगठनों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान का विषय है। राजनीति विज्ञान में हम इन बातों पर विचार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास कब और कैसे हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विधि का वर्तमान स्वरूप क्या है और उनके पीछे कौन सी शक्ति है। राजदूतों, युद्धबंदियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि तथा युद्ध से संबंधित नियमों में कौन से सुधार किए जाएं। 1960 और उसके बाद विमानों के बलात् अपहरण की बढ़ती हुई घटनाओं को देखकर इस बात पर विचार किया जा सकता है कि वायु यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएं। वर्तमान समय में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि आतंकवाद की रोकथाम के लिए संप्रभु राज्यों द्वारा परस्पर किस प्रकार सहयोग किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों पर विचार करता है और अब तक स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन और कार्यों का अध्ययन करता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है और इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, शासन के प्रकार और अंगों, प्रतिनिधित्व, राज्य के कार्यों, राजनीतिक दलों, दबाव समूह, जनमत, व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि राजनीतिक विचारधाराओं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधों और संगठन का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में आधुनिकतम दृष्टिकोण, परंपरागत रूप में यह कहा जा सकता है कि व्यक्तियों का राजनीतिक जीवन, राज्य और अन्य राजनीतिक संस्थाएं ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय हैं, लेकिन युद्धोत्तर काल में विशेषतया अभी हाल ही के वर्षों में इस दृष्टिकोण की कटु आलोचना हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भी ग्राहम वालस, ए एफ बेंटले, कैटलिन लासवेल आदि विचारकों ने इस बात का प्रतिपादन किया था कि हमारे विषय का अध्ययन केंद्र राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा इन संस्थाओं की चालक शक्ति मानवीय व्यवहार को बनाए जाना चाहिए। युद्धोत्तर वर्षों में इस प्रवृत्ति ने एक व्यापक और क्रांतिकारी रूप ग्रहण कर लिया है और इस प्रवृत्ति के एक प्रमुख प्रणेता डेविड इंस्टन और इसे व्यवहारवादी आंदोलन की संज्ञा दी है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन की नवीन प्रवृत्तियों ने इस विषय के अध्ययन क्षेत्रों को और व्यापकता प्रदान की है और मानव जीवन के और राजनीतिक पक्षों तथा समुदायों को इसमें सम्मिलित कर दिया है। आज की स्थिति के संबंध में रॉबर्ट ए ड्वेल ने लिखा है कि राजनीति आज मानवीय अस्तित्व का अपरिहार्य तत्व बन चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था से अवश्य ही संबंध होता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा और क्षेत्र के संबंध में परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, एक तुलनात्मक अध्ययन। राजनीति विज्ञान की परिभाषा और क्षेत्र के संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण का प्रतिपादन ब्रेंट शेली, गोरिश, गार्नर, सीले, लिकॉक, गैटल और लॉस्की आदि विद्वानों के द्वारा किया गया है। आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादक हैं डेविड इस्टन, रॉबर्ट ए डहल, जी ई जी कैटलिन, मैक्स बेबर और एच डी लॉसवेल आदि। विषय की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण निम्न रूपों में परंपरागत दृष्टिकोण से भिन्न है। पहला, परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं अर्थात राज्य सरकार आदि के अध्ययन पर बल देता है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण की मान्यता यह है कि राजनीतिक संस्थाएं व्यक्तियों से चालित होती है और व्यक्तियों के व्यवहार के माध्यम से ही राजनीतिक जीवन को समझा जा सकता है। दूसरा, परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान का अध्ययन अनन्यता अर्थात अलगाव के रूप में किया जाता है और यह अपने आप को मात्र राजनीतिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं तक सीमित कर लेता है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण की मान्यता यह है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भों में ही उचित रूप में समझा जा सकता है। तीसरा, परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों से युक्त और मूल्यों पर आधारित है, इसलिए उसमें व्यक्तिनिष्ठता आ गई है और विचार भेद की स्थिति बहुत अधिक प्रबल रूप में है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण का उद्देश्य राजनीति विज्ञान में लगभग पदार्थ विज्ञानों की सीमा तक वस्तुनिष्ठता लाना है, अतः इसमें मूल्य सापेक्षता के स्थान पर मूल्य मुक्त दृष्टिकोण अपनाने की चेष्टा की गई है। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि 1960 के बाद यह स्पष्ट होने लगा है कि पूर्णतया मूल्य मुक्त दृष्टिकोण अपनाने पर राजनीति विज्ञान के अध्ययन की कोई सार्थकता नहीं रहेगी। चौथा, परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान के आदर्शात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, इसमें इस बात पर अधिक ध्यान दिया गया है कि क्या होना चाहिए और यह दृष्टिकोण राजनीति अध्ययन को नीतिशास्त्र के बहुत अधिक समीप ला देता है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण आदर्शवादी पक्ष की अपेक्षा यथार्थवादी पक्ष पर अधिक बल देता है। पांचवा, परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है और इस दृष्टि से मात्र औपचारिक अध्ययन बन कर रह गया है, लेकिन आधुनिक लेखक राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा उन साधनों तथा प्रक्रियाओं को अधिक महत्व देते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती हैं। इस दृष्टि से आधुनिक राजनीतिक अध्ययनों में एक वास्तविकता आ गई है। वस्तुतः आधुनिक अध्ययनों को सत्य की प्राप्ति के अधिक गंभीर प्रयत्न कहा जा सकता है। छठा, परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए परंपरागत ऐतिहासिक तुलनात्मक और दार्शनिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण का सर्वप्रथम उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करना है। इस दृष्टि से आधुनिक दृष्टिकोण में मनोवैज्ञानिक प्रयोग एवं पर्यवेक्षण की पद्धतियों तथा सांख्यिकी और नमूना सर्वेक्षण आदि प्रवृत्तियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा प्रकृति और क्षेत्र के संबंध में परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में उपर्युक्त विभिन्नताओं के बावजूद इन दोनों को परस्पर विरोधी नहीं समझा जाना चाहिए। द्वितीय महायुद्ध के बाद जिस व्यवहारवादी आंदोलन का उदय हुआ उसने इस विषय के परंपरागत अध्ययन की कमियों को उजागर किया और इसे नवीन तथ्य नवीन अध्ययन सामग्री शैलियां और पद्धतियां प्रदान की, लेकिन 1960 के बाद यह स्पष्ट होने लगा है कि व्यवहारवादी आंदोलन की अपनी कमियां तथा सीमाएं हैं, अतः अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण के पूर्णतया आधुनिक दृष्टिकोण अपनाए जाने के बजाय आधुनिक दृष्टिकोण के प्रकाश में परंपरागत दृष्टिकोण की कमियों को दूर कर विषय को यथासंभव वैज्ञानिकता की दिशा में आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान के अध्ययन में ये दो दृष्टिकोण परंपरागत और आधुनिक एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें इसी रूप में ग्रहण किए जाने की आवश्यकता है। राजनीतिक दर्शन। हमारे अध्ययन विषय को कुछ लेखक राजनीतिक दर्शन का नाम प्रदान करते हैं और अपने पक्ष के समर्थन में निम्न तर्क देते हैं। पहला, विषय की सैद्धांतिक प्रवृत्ति के अनुरूप। उनका तर्क है कि हमारे विषय की प्रकृति सैद्धांतिक एवं दार्शनिक है, व्यवहारिक नहीं। अपने अध्ययन विषय के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित आधारभूत तथ्यों का ही अध्ययन करते हैं, उनके क्रियाकलापों का नहीं। इस विषय के अंतर्गत हम राज्यों की उत्पत्ति, उनका विकास, प्रकृति, उद्देश्य, मानव अधिकार एवं कर्तव्य और राजनीतिक धारणाओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि राज्य संबंधी अध्ययन का मुख्य भाग ये सिद्धांत ही हैं, इसलिए इसे राजनीतिक दर्शन ही कहा जाना चाहिए। राजनीतिक दर्शन राजनीतिक विज्ञान का पूर्वगामी। इस संज्ञा के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि राजनीतिक दर्शन राजनीतिक विज्ञान का पूर्वगामी है और इस विषय ने अपने अधिकांश सिद्धांत राजनीतिक दर्शन से ही लिए हैं। प्रतिष्ठित शब्द दर्शन अपने आप में एक प्रतिष्ठित शब्द है जिसका प्रयोग उच्च स्तरीय ज्ञान के लिए किया जाता है। उनका कथन है कि स्थानीय एवं शाश्वत महत्व के विषयों से संबंधित होने के कारण इन विषयों को राजनीतिक दर्शन जैसा सम्मानजनक नाम ही दिया जाना चाहिए। इस नामकरण पर आपत्तियां। इस नामकरण के संदर्भ में निम्न आपत्तियां हैं। पहला, अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से। यद्यपि राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत विषय का संपूर्ण सैद्धांतिक अध्ययन आ जाता है, लेकिन उसमें विषय का वह भाग छूट जाता है जिसे सर फ्रेडरिक पोलक के विभाजन में व्यवहारिक राजनीति का नाम दिया गया है। जहाँ तक हमारे अध्ययन विषय का संबंध है, इसके लिए सैद्धांतिक राजनीति के साथ साथ ही व्यवहारिक राजनीति का अध्ययन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, और समकालीन विद्वान तथा राजनीति तो आदर्श की अपेक्षा वास्तविकता की खोज में ही अधिक लगे हैं। दूसरा, प्रकृति की दृष्टि से राजनीतिक दर्शन शब्द से विषय की प्रकृति के संबंध में ऐसा बोध होता है कि यह विषय एक कला मात्र ही है, विज्ञान नहीं। यह निष्कर्ष अध्ययन विषय की सही प्रकृति के अनुकूल नहीं है। तीसरा, दर्शन शब्द अनिश्चितताओं और वास्तविकताओं का प्रतीक। वर्तमान समय में दर्शन शब्द अनिश्चितताओं तथा अवास्तविकताओं का प्रतीक हो गया है, और व्यवहार में साधारणतया उस व्यक्ति के लिए दार्शनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो जीवन की यथार्थता से दूर अपने ही कल्पना लोक में निवास करता है। राजनीतिक दर्शन शब्द के प्रयोग का तात्पर्य यह होगा कि इस विषय में राज्य की समस्याओं पर केवल कल्पना के आधार पर विचार किया जाता है जो वास्तविकता से दूर रहती है। यह निश्चित रूप से एक सुखद स्थिति नहीं होगी, अतः हमारे अध्ययन विषय के लिए राजनीतिक दर्शन शब्द को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनीति विज्ञान का स्वरूप या प्रकृति। क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान है? यद्यपि हमारे अध्ययन के विषय को राजनीति विज्ञान नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन इस विषय को विज्ञान मानने के विषय में राजनीति विज्ञान के विद्वानों में ही बहुत अधिक मतभेद है। एक ओर बक्कल, कामटे, मैटलैंड, एमास, ब्रिडियर्ड, कैटलिन, मोस्का, ब्रोगन, बर्ग आदि विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो दूसरी ओर अरस्तु इसे सर्वोच्च विज्ञान और बर्नार्ड शॉ इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहते हैं। अरस्तु के अतिरिक्त बोंदा, हॉब्स, मोंटेस्क्यू, प्राइस, ब्लंटशली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लॉस्की आदि अन्य विद्वान भी इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकता के विरुद्ध तर्क। बक्कल, कामटे आदि विद्वानों के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्य और कारण में सदैव निश्चित संबंध पाया जाता है और जिसके निष्कर्ष निश्चित एवं शाश्वत होते हैं। विज्ञान की इस परिभाषा के आधार पर ये विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कामटे के शब्दों में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के संबंध में एकमत नहीं है। इसमें विकास की निरंतरता का अभाव है। इसमें उन तत्वों का अभाव है जिसके आधार पर भविष्य के लिए ठीक निष्कर्ष निकाले जा सकें। इन विद्वानों द्वारा अपने कथन के पक्ष में निम्न तर्कों का प्रयोग किया जाता है। पहला, सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। राजनीति विज्ञान में गणित के 2 और 2 = 4 या भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के नियम की भांति ऐसे तथ्यों का नितांत अभाव है जिन पर सभी विद्वान सहमत हों। यदि एक ओर आदर्शवादी राज्य की सर्वोच्चता सत्ता का प्रतिपादन करते हैं तो दूसरी अराजकतावादी राज्य की अनावश्यकता का, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एबेसीज और लॉस्की, तो दूसरी ओर अराजकतावादी राज्य की अनावश्यकता। दूसरा, कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव। भौतिक एवं रसायन विज्ञान में कार्य और कारण में निश्चित संबंध पाया जाता है, किंतु राजनीतिक क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाएं अनेक पेचीद कारणों का परिणाम होती है, और क्रिया प्रतिक्रिया के इस चक्र में अमुक घटना किन कारणों के परिणाम स्वरूप हुई यह कहना बहुत कठिन हो जाता है। 1917 की सोवियत क्रांति साम्यवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप हुई। उस समय के विशेष अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के कारण इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तीसरा, पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव। पदार्थ विज्ञानों में एक प्रयोगशाला में बैठकर यंत्रों की सहायता से मनचाहे प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान में इस प्रकार के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय मानों के क्रियाकलाप हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। इस संबंध में ब्राइस ने कहा है कि भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बार बार प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन राजनीति में एक प्रयोग बार बार नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि उसी प्रकार की दशाएं बुरा नहीं पैदा की जा सकती, जैसे कोई नदी के प्रवाह में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। चौथा, मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। प्राकृतिक विज्ञानों के आधार पर विषय निर्जीव होते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय मानव एक जीवित, जागृत और चेतन सत्ता है। अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव में अंतर होता ही है और एक समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति भी भिन्न भिन्न रूप से आचरण करते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान, जो कि मनुष्य और उससे संबंधित संस्थाओं का अध्ययन करता है, प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं हो सकता। पांचवा, अचूक माप की कमी। शुद्ध माप विज्ञान की एक विशेषता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में शुद्ध माप संभव नहीं है। मनुष्यों का आवेग, उत्तेजना, भावना, अभिलाषा, क्रोध, प्रेम आदि राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व नितांत अस्पष्ट और अदृश्य हैं, जिन्हें ताप या गैस के दबाव की भांति मापा नहीं जा सकता। छठा, भविष्यवाणी की अक्षमता का अभाव। पदार्थ विज्ञान के नियम निश्चित होने के कारण किसी भी विषय के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरणार्थ, यह सही सही बतलाया जा सकता है कि किस दिन और किस समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन राजनीति विज्ञान में यह नहीं बतलाया जा सकता कि किसी निश्चित विचार का जनता पर प्रभाव पड़ेगा या चुनाव में किस पक्ष को विजय प्राप्त होगी। सातवा, परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों के संबंध में मत वैभिन्न। विज्ञान की एक विशेषता यह मानी जाती है कि उसमें परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों के संबंध में निश्चित तथा एकमतता हो, लेकिन हमारे अध्ययन विषय के संबंध में स्थिति विपरीत ही है। स्वयं इस विषय के नाम के संबंध में मत वैभिन्न है और जनता विज्ञान की उतना ही परिभाषाएं हैं जितने इससे इसके लेखक। इस विषय के अंतर्गत प्रजातंत्र और समाजवाद जैसी अनेक बहुअर्थी धारणाएं भी हैं। आठवां, अध्ययन विषय आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं। विज्ञान वस्तुपरक होता है और इसकी अध्ययन वस्तु निर्जीव होने के कारण वैज्ञानिक मानवीय भावनाओं से दूर रहते हुए तटस्थता के साथ इसके अध्ययन में संलग्न रहता है, लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाना अर्थात अध्ययन में तटस्थ रहना कठिन है। चाहे कश्मीर का प्रश्न हो या महाशक्तियों के सिद्ध युद्ध का प्रश्न, राजनीति विषयों का अध्ययन पदार्थ विज्ञानों की भांति वैज्ञानिक रूप नहीं ले सकता। उपर्युक्त तर्कों के आधार पर बकल कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता। उपर्युक्त विचारों में सत्य का कुछ अंश अवश्य है, किंतु इसके साथ ही बकल, कामटे आदि विद्वानों का दृष्टिकोण विज्ञान की संकुचित एवं त्रुटिपूर्ण धारणा पर आधारित है। इन विद्वानों द्वारा पदार्थ विज्ञानों की परिभाषा को राजनीति विज्ञान जैसे सामाजिक विचार पर लागू करने की भारी भूल की गई है। सर्वमान्य तथ्यों और कारण तथा कार्य के बीच निश्चित संबंध पाए जाने वाले विषय को ही विज्ञान कहा जाए, इस प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं है। गॉर्नर के शब्दों में विज्ञान की ठीक परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है कि एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथ्य परस्पर संबंध, क्रमबद्ध तथा वर्गीकृत किए गए हों। चैम्बर्स डिक्शनरी में विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि विज्ञान वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भलीभांति परीक्षित तथा क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धांतों में समाहित हो। चैम्बर्स डिक्शनरी, हर्नशा और थॉमसन आदि विद्वानों द्वारा भी विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। उपर्युक्त परिभाषाओं के संदर्भ में जब राजनीति विज्ञान पर विचार किया जाता है तो यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में निम्न तथ्य दिए जा सकते हैं। पहला, राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित है। विज्ञान का सर्वप्रथम लक्षण यह होता है कि उसका समस्त ज्ञान क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। यह लक्षण राजनीति विज्ञान में पूरे तौर पर विद्यमान है। राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार, अन्य राजनीतिक संस्थाओं, धारणाओं व विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, राजनीति विज्ञान में राज्य के भूतकालीन स्वरूप के आधार पर ही वर्तमानकालीन स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके किया जाता है। विषय के अंतर्गत पाए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन के ये निश्चित प्रमाण है। दूसरा, अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एकरूपता। अध्ययन सामग्री के आधार पर भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी अध्ययन सामग्री में कुछ सीमा तक स्थायित्व एवं एकरूपता विद्यमान है। यद्यपि मानव व्यवहार में जड़ पदार्थ जैसी एकरूपता नहीं पाई जाती, फिर भी यह कहा जा सकता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मनुष्य का राजनीतिक आचरण एक निश्चित प्रकार का ही होगा। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में एकरूपता तथा समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा एक प्रकार के कार्य ही करता है। तीसरा, सर्वमान्य तथ्य। राजनीति विज्ञान में कुछ सर्वमान्य तथ्य अवश्य ही हैं। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसी प्रकार के सर्वमान्य तथ्य का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो गृहस्थों की तो बात ही क्या, वानप्रस्थी और सन्यासी लोग भी क्रुद्ध हो जाते हैं और विद्रोह कर बैठते हैं। इसके विपरीत दंड शक्ति का ठीक रूप में प्रयोग करने पर जनता में सर्वत्र धर्म का राज्य रहता है। इसी प्रकार कुछ अन्य बातों पर भी सभी सहमत हैं, यथा लोक सेवाओं के सदस्य अस्थायी आधार पर नियुक्त किए जाने चाहिए तथा वे तटस्थ और निष्पक्ष होने चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्षी होने चाहिए। असमानता, जातिवाद, निरक्षरता और अत्यधिक निर्धनता प्रजातंत्र के लिए बुरी है। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान में मतैक्य का जो अभाव है उसका कारण विषय का अवैज्ञानिक तत्व नहीं वरन देश काल के अनुसार परिवर्तित होने वाली मानवीय प्रकृति और संबंधित विचारकों की भावनाओं का भेद है। चौथा, कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध। कार्य और कारण के पारस्परिक संबंध के विषय में की गई आपत्ति भी विशेष महत्व नहीं रखती है। इसमें संदेह नहीं कि पदार्थ विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान में कारण तथा कार्य में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, फिर भी विशेष घटनाओं के अध्ययन से कुछ सामान्य परिणाम तो निकाले ही जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जनता का संतोष शासन वर्ग का शासित वर्ग के प्रति अपमानजनक विकेंद्रीकरण, अपमानजनक व्यवहार और आर्थिक असमानता सदैव विद्रोह के सामान्य कारण रहे हैं। शक्तियों के विकेंद्रीकरण से जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है और शासकों को बिना किन्हीं प्रतिबंधों के शासन शक्ति प्रदान कर दी जाए तो वे भ्रष्ट हो जाते हैं। पांचवा, पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव। राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण तथा परीक्षण भी संभव है, यद्यपि इस विषय के अंतर्गत इनका रूप पदार्थ विज्ञानों से भिन्न होता है। पर्यवेक्षण की पद्धति के आधार पर लोकतंत्रवाद और दूसरी शासन पद्धतियों का अध्ययन करते हुए हम ये सामान्य परिणाम निकाल सकते हैं कि दूसरी शासन पद्धतियों की अपेक्षा लोकतंत्र लोकहित के प्रति अधिक सजग रहता है। इसी प्रकार विविध राज्यों के कार्यक्षेत्र के अध्ययन के आधार पर यह परिणाम निकाला जा सकता है कि राज्य के कार्यक्षेत्र की सीमित कर रखने की विचारधारा के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य की नीति ही उपयुक्त है। राजनीति विज्ञान में यद्यपि पदार्थ विज्ञानों की भांति प्रयोगशालाएं में बैठकर पूर्ण निश्चितता एवं सरलता से तो प्रयोग नहीं किए जा सकते, फिर भी राजनीति विज्ञान में प्रयोग होते ही रहते हैं और एक प्रकार से संपूर्ण मानव जगत इसकी प्रयोगशाला ही है। इस संबंध में गार्डनर ने ठीक ही लिखा है कि प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना और प्रत्येक नई बात का प्रारंभ एक प्रयोग ही होता है, क्योंकि उस समय तक वह अस्थायी तथा प्रस्ताव रूप में ही समझा जाता है जब तक कि परिणाम उसके अस्थायी होने की योग्यता सिद्ध न कर दे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अपनाया गया सत्याग्रह 1959 में राजस्थान में अपनाई गई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ इस प्रकार के राजनीतिक प्रयोगों के उदाहरण हैं। छठा, भविष्यवाणी की क्षमता। जहां तक भविष्यवाणी की क्षमता का संबंध है, राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की भांति तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, पर इतना मानना होगा कि इस विषय में भी भविष्यवाणी संभव है, चाहे यह भविष्यवाणी सदैव सत्य न हो। डॉक्टर फाइनर के शब्दों में, हम निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणियां नहीं कर सकते लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सही रूप में भविष्यवाणी की क्षमता ही विज्ञान की कसौटी मान ली जाए तो फिर ऋतु विज्ञान जैसे अनेक विषय भी विज्ञान नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां अनेक बार गलत सिद्ध होती है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के संबंध में बकल, कामटे, मैटलैंड द्वारा उठाई गई आपत्तियां बहुत अधिक सीमा तक निराधार है और पदार्थ विज्ञानों से आधारभूत रूप से भिन्न होने पर भी राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। अरस्तु, बोंदा, हॉब्स, मोंटेस्क्यू, कर्नवाल, लेविस, सिजविक, ब्राइक, ब्लंटशील, ब्रगेस, बिलोबी, जेलिनिक, गॉर्नर आदि सभी विद्वान इसे एक विज्ञान मानने के पक्ष में हैं। राजनीति विज्ञान एक अनिश्चित विज्ञान। यद्यपि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है किंतु वह पदार्थ विज्ञानों की भांति पूर्णतया अनिश्चित नहीं है और इसे अनिश्चित विज्ञानों की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। इस अनिश्चितता के निम्न कारण है। पहला, राजनीति विज्ञान का संबंध सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जटिल समस्याओं से होता है, भौतिक विज्ञानों के समान पदार्थों से नहीं। दूसरा, राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य के विवेकशील और परिवर्तनशील स्वभाव से है, भौतिक विज्ञानों के समान अस्थायी प्रकृति वाले तत्वों से नहीं। तीसरा, राजनीति विज्ञान के यंत्र के रूप में प्रयुक्त होने वाली मानवीय यंत्रियां भौतिक यंत्रों के समान निरपेक्ष निर्णायक नहीं होती है। एक रसायन शास्त्र अणु या मॉलिक्यूल के प्रति कोई घृणा अथवा प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता, किंतु राजनीति शास्त्री पर अचेतन रूप में उसके व्यक्तिगत विचारों एवं देशों का प्रभाव पड़ता है। चौथा, राजनीति के अध्ययनकर्ता को अपने विषय के नैतिक पहलू की ओर ध्यान देना होता है, लेकिन भौतिक विज्ञान के सम्मुख नैतिक औचित्य की कोई समस्या नहीं होती। राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि कोई भी अध्ययन या तो विज्ञान की श्रेणी में होता है या कला की, लेकिन वस्तुतः ऐसा सोचना त्रुटिपूर्ण है। विलियम एसलिंगर ने ठीक ही लिखा है कि विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है, कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। राजनीति विज्ञान के संबंध में यह बात पूर्णतया लागू होती है। राजनीति विज्ञान के कला होने के संबंध में विचारकों में बहुत अधिक मतभेद नहीं है। कला ऐसे ज्ञान को ही कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना हो। एक विचारक के शब्दों में सत्यम शिवम और सुंदरम की साधना की ही कला है। इस अर्थ में राजनीति विज्ञान एक कला भी है और ब्लंटशाली। जैसे अनेक विचारकों का तो कथन है कि राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक बोध होता है। राज्य का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से वह कैसा व्यवहार करे, राजनीति में इन समस्त बातों का प्रतिपादन होता है। राजनीति विज्ञान में राज्य के भूतकालीन और वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करने के साथ साथ राज्य के भावी आदर्शात्मक स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है और यह बतलाया जाता है कि भविष्य में राज्य और राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। राजनीति विज्ञान में इस बात का प्रतिपादन किया जाता है कि विश्व शांति के हित में राष्ट्रीय राज्यों का अंत कर एक विश्व संघ की स्थापना की जानी चाहिए। वर्तमान समय में लगभग सभी पक्षों द्वारा जन कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना लिया गया है और यह भी माना जाता है कि एक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को अधिकाधिक स्वतंत्रता और अधिकार दिए जाने चाहिए। एक श्रेष्ठ राज्य और सुसंस्कृत आदर्श समाज की स्थापना राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ध्येय और लक्ष्य ही है और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान एक उच्च कोटि की कला है जो समाज का यथार्थ चित्र भी प्रस्तुत करती है और प्रदर्शन भी। वर्तमान समय में मानव जीवन और राज्यों का पारस्परिक जीवन बहुत अधिक आत्मनिर्भर हो गया है और ऐसी परिस्थितियों में राजनीति विज्ञान का कला रूप ही विश्व को विनाश की गर्त से बचा सकता है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान एक विज्ञान और कला दोनों ही है। कैटलिन राजनीति का अर्थ विस्तार से करते हुए उसे कला, दर्शन और विज्ञान तीनों मानते हैं। लॉसवेल ने भी इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान का नाम दिया था और इस संबंध में अरस्तु का विचार था कि मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन सबसे अधिक उपयोगी है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता अरस्तु के समय से आज बहुत अधिक बढ़ गई है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता की विवेचना प्रमुखतया निम्नलिखित रूपों में की जाती है। पहला, मानव अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान। मानवीय जीवन के प्रारंभिक काल से ही व्यक्ति और राज्य के संबंधों की समस्या अत्यंत जटिल रही है और सामाजिक विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि दोनों के बीच उचित संबंधों की स्थापना हो। यह कार्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन की सहायता से ही किया जा सकता है। हम इस विषय के आधार पर मानवीय अधिकारों का ज्ञान प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर सकते हैं और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त कर समाज एवं राज्य की उन्नति में योगदान दे सकते हैं। अरस्तु ने एक स्थान पर कहा है कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, किंतु जब यह बिना कानून और न्याय के जीवन व्यतीत करता है तो सबसे अधिक भयंकर हो जाता है। राजनीति विज्ञान मानव को अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान कर उसे समाज की श्रेष्ठतम इकाई के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। मानवीय संघर्ष का मूल कारण व्यक्ति में उचित संबंधों का अभाव है। राजनीति विज्ञान व्यक्तियों में परस्पर उचित संबंध स्थापित करके संघर्ष के स्थान पर सहयोग के सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्नशील है और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज और व्यक्ति दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना। वैज्ञानिक विकास के कारण संसार भर के मनुष्य अब एक दूसरे के बहुत अधिक समीप आ गए हैं और संपूर्ण विश्व ने एक इकाई का रूप धारण कर लिया है। राजनीति विज्ञान हमें मानवीय जीवन की इसी आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता है। राजनीति विज्ञान स्वयं अपने और विश्व के दूसरे देशों का ज्ञान प्रदान करते हुए हमारे दृष्टिकोण को विशाल और उदार बनाता है तथा हमें परिवार, जाति, ग्राम और नगर के तंग दायरों में से बाहर निकालकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने की क्षमता प्रदान करता है। वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान विश्व राज्य के निर्माण की ओर प्रेरित करता है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्न अत्यंत प्रशंसनीय है। तीसरा, राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास का ज्ञान। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न देशों के राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन के आधार पर राजनीति विज्ञान का एक विद्यार्थी अपने देश के प्राचीन गौरव और असफलताओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भारतीय राजनीति का विद्यार्थी अपने देश के राष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन करके यह जान सकता है कि उसके देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कितने त्याग और बलिदान किए गए हैं, और इसके अध्ययन के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से उसमें देशभक्ति और स्वतंत्रता की रक्षा की भावना उत्पन्न होती है। चौथा, उत्तम प्रशासन कला का ज्ञान। सार्वजनिक प्रशासन राजनीति विज्ञान की एक शाखा है और उसमें उत्तम प्रशासन कला के संबंध में निरंतर खोज होती रहती है। प्रशासन को कुशल और जनहितकारी किस प्रकार बनाया जाए, सरकारी कर्मचारियों का चुनाव और प्रशिक्षण किस प्रकार से हो, आदि प्रश्नों का राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। आजकल सार्वजनिक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन को जनता के प्रति अधिकाधिक उत्तरदायी बनाने के उपयोग पर विचार किया जा रहा है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान। वैज्ञानिक प्रगति ने विभिन्न देशों को एक दूसरे के बहुत निकट ला दिया है, और ऐसी स्थिति में राज्यों के पारस्परिक संबंधों और समस्याओं का अध्ययन बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं प्रबंध राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है, और इसके अंतर्गत साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद एवं निःशस्त्रीकरण जैसी विचारधाराओं और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संबंध में ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के ज्ञान के आधार पर ही एक व्यक्ति वैदेशिक नीति और उसकी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार कर सकता है। छठा, राज्य एवं सरकार का ज्ञान। राजनीति विज्ञान में राज्य के उद्देश्य, संगठन और कार्यक्षेत्र तथा शासन के प्रकार एवं व्यवस्था के संबंध में भिन्न भिन्न विचारधाराएं मिलती है। और इन विचारधाराओं के गुण दोषों का ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं की दृष्टि से कौन सी विचारधारा सर्वाधिक उपयुक्त होगी और सरकार का संगठन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। सातवां, राजनीतिक चेतना का विकास। जिन देशों में नागरिकों में राजनीतिक चेतना का जागृत नहीं होती या राजनीतिक चेतना निर्बल होती है, वहां नागरिक अपने कर्तव्यों का संपादन उचित रूप से नहीं कर पाते। नागरिकों में राजनीतिक चेतना के अभाव के कारण नेता और प्रशासक अपने कर्तव्यों को भूलकर पथ भ्रष्ट हो सकते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान के ज्ञान से संपन्न राजनीतिक दृष्टि से जागरूक जनता कभी भी अपने शासकों को भ्रष्ट नहीं होने दे सकती। ऐसी जनता के द्वारा सरकार की उसकी गलतियों के लिए आलोचना की जाती है और शासन को जनहितकारी कार्यों में सक्रिय सहयोग प्रदान किया जाता है। विदेशी आक्रमण या आंतरिक राष्ट्रीय संकट की स्थिति का सामना ऐसी जागरूक जनता के द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान एक राजनीतिक चेतना का विकास कर शासन को जनहितकारी बनाए रखता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन सदैव से ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन वर्तमान समय में तो जनकल्याणकारी राज्य की विचारधाराएं, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था और विश्व के देशों की पारस्परिक निर्भरता ने इस अध्ययन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण और एक प्रकार से अनिवार्य ही बना दिया है। राजतंत्रात्मक शासन के को निरीप हो हमें कहानी की कहावत प्रचलित थी, जिसके आधार पर राजनीति केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के विचार का विषय समझी जाती थी, लेकिन प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था ने राजा और प्रजा के भेद को समाप्त कर दिया है और राजनीति सर्वसाधारण के विचार का विषय बन गई है। आज व्यक्तियों की राजनीति विज्ञान के प्रति उदासीनता संभव नहीं है। वे चाहे राजनीति में अभिरुचि न रखते हों, किंतु राजनीति उनसे दूर नहीं रह सकती। रॉबर्ट ए डहल के शब्दों में, राजनीति आज मानवीय अस्तित्व का अपरिहार्य तत्व बन गई है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय, किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंध है। आज राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन निसंदेह अत्यधिक उपयोगी है। आइवर ब्राउन का यह कथन सर्वथा सत्य है कि सामाजिक जीवन के वास्तविक मूल्य के प्रति यदि सहज बुद्धि से देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगी। वैसे तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्व देश और काल की सीमाओं से परे है, किंतु भारत में नव प्रजातंत्र की स्थापना हुई है उसे देखते हुए भारतीय नागरिकों, विशेषतः भारतीय विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रजातंत्र के लिए सबसे अधिक आवश्यकता प्रबुद्ध एवं जागरूक नागरिकों की है, और नागरिकता की इस भावना तथा राजनीतिक नेतृत्व के गुण विकसित करने की क्षमता राजनीति विज्ञान के अध्ययन में ही निहित है। इसी कारण राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिकाधिक महत्व दिया जा सकता है या अधिक महत्व दिया जा रहा है।